नमस्कार, आज हमारे सामने विश्लेषण के लिए एक बहुत ही दिलचस्प अहम किताब है, शांति कुंज द्वारा महिला जागरण अभियान का सूत्र संचालन। इसे लिखा है वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी ने। वो गायत्री परिवार की सह संस्थापिका रही हैं और आज हमारा मकसद है 1970 के दशक के मध्य में शांति कुंज हरिद्वार से जो महिला जागरण अभियान शुरू हुआ उसके ढांचे और लक्ष्यों को करीब से समझना। उस जमाने के हिसाब से देखें तो ये एक काफी बड़ी पहल थी। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई में उतरना।
बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अभियान सीधे सीधे स्त्रियों के उत्थान से जुड़ा था। मतलब समाज की आधी आबादी सोच ये थी कि भाई उनके विकास के बिना समाज का, आप कह सकते हैं, पूरा विकास हो ही नहीं सकता। और इस पूरी कोशिश का जो केंद्र था वो बना शांति कुंज।
हाँ, वंदनीय माता जी बताती हैं कि इस बड़े काम को आगे बढ़ाने के लिए तीन खास तरीकों पर जोर था, लेखनी, वाणी और क्रियाशीलता। तो सबसे पहले बात करते हैं लेखनी की, मतलब लिखना, पढ़ना, छापना। उस दौर में ये कितना महत्वपूर्ण रहा होगा।
हाँ बिल्कुल, देखिए साहित्य निर्माण को एक ठोस आधार माना गया। इसी सोच के साथ 1 जुलाई 1975 से महिला जागरण नाम की एक हिंदी मासिक पत्रिका भी शुरू की गई। योजना यह भी थी कि आगे चलकर इसे दूसरी भारतीय भाषाओं में भी लाया जाए।
अच्छा,
सिर्फ हिंदी नहीं
जी,
साथ ही छोटी छोटी प्रचार पुस्तिकाएं और खासकर प्रौढ़ स्त्री पाठशालाओं के लिए उनके हिसाब से किताबें तैयार करने की योजना बनी। और कोशिश ये थी कि इनमें व्यक्ति, परिवार, समाज, इनको बेहतर बनाने की जो सूत्र हैं वो सरल भाषा में दिए जाएं।
और ये सब आसानी से लोगों तक पहुंचे भी, इसके लिए शांति कुंज में युगांतर चेतना प्रेस भी लगाया गया था ताकि किताबें अच्छी दिखें, छपाई सुंदर हो और हाँ, कम कीमत पर मिल सकें। वंदनीय माता जी का मानना था कि ये साहित्य लोगों को पसंद आएगा। ये सोच तो काफी आगे की लगती है।
समझाना, और इसमें एक स्लाइड प्रोजेक्टर का जिक्र है, प्रकाश चित्र यंत्र, वो बड़ा दिलचस्प है।
स्लाइड प्रोजेक्टर उस जमाने में?
हाँ, उसके जरिए घर घर जाकर स्त्रियों को जागृति, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य, समाज निर्माण, इन सब बातों को तस्वीरों के साथ समझाया जाना था।
ओह अच्छा, मतलब सिर्फ लेक्चर नहीं बल्कि देखकर सीखने पर जोर।
बिल्कुल, इसके लिए खास स्लाइडें बनी और स्त्रियों को ट्रेनिंग भी दी गई कि भाई इनके सहारे अपनी बात कैसे रखनी है।
ये तो तकनीक का एक तरह से शुरुआती इस्तेमाल हुआ लोगों से जुड़ने के लिए, है ना?
सही कहा, और यहीं से हम तीसरे और शायद सबसे अहम स्तंभ पर आते हैं, क्रियाशीलता।
क्रियाशीलता यानी जमीन पर उतरकर काम करना।
हाँ, क्योंकि सिर्फ पढ़ना सुनना काफी नहीं होता ना, बदलाव लाना है तो सक्रिय होना पड़ेगा।
बिल्कुल, इसके लिए तो फिर प्रशिक्षित स्त्रियों की जरूरत पड़ी होगी जो ये सब कर सकें।
जरूरत थी बिल्कुल, ऐसी स्त्रियां जो संगठन चला सकें, सिखा सकें, बोल सकें, पढ़ा सकें, यहाँ तक कि गाने बजाने में भी माहिर हों। तो शांति कुंज में ट्रेनिंग की व्यवस्था हुई। हालांकि जैसा बताया गया है, जगह थोड़ी सीमित थी, कुल 200 लोगों की क्षमता थी जिसमें 100 स्त्रियों के प्रशिक्षण के लिए थी।
अच्छा, 100 स्त्रियों के लिए, और ट्रेनिंग भी अलग अलग तरह की थी?
हाँ, मुख्य रूप से दो तरह के कार्यक्रम थे। एक तो 3 महीने का, ये गृहस्थ स्त्रियों के लिए था जो घर परिवार संभालती हैं। इसमें सेहत, मानसिक संतुलन, मतलब मन को शांत रखना, घर कैसे चलाएं, साफ सफाई, घर में ही छोटे मोटे उद्योग कैसे करें और अपनी भावनाओं को कैसे संभालें, ये सब सिखाते थे।
यानी बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी चीजें।
जी हाँ, और दूसरा था कन्याओं के लिए 6 महीने का प्रशिक्षण।
6 महीने का, ये पहले तो शायद 1 साल का था।
हाँ, पहले 1 साल का था, पर शायद जगह और समय की कमी से इसे 6 महीने का किया गया। इसका मकसद था युवतियों को प्रौढ़ स्त्री पाठशालाओं में टीचर बनने के लिए तैयार करना, पर इसका सिलेबस वो काफी बड़ा था।
अच्छा, क्या क्या था उसमें?
बहुत सघन था। दिन में 8 घंटे की ट्रेनिंग होती थी, सोचिए। इसमें संगीत, घर के उद्योग, जीवन की जो मुश्किलें आती हैं उनके हल, सामान्य ज्ञान जिसमें स्वास्थ्य, पैसे बचाना, मनोविज्ञान, ऐसी कई बातें थी।
बाप रे, 8 घंटे!
और सुनिए, साथ में व्यायाम, ड्रिल और यहाँ तक कि लाठी चलाना भी सिखाया जाता था।
लाठी चलाना?
ये थोड़ा चौंकाने वाला है,
है ना?
मुझे भी लगा, ये सिर्फ पढ़ाने की ट्रेनिंग से तो कहीं ज्यादा लगता है।
हाँ बिल्कुल,
शायद इसका एक मकसद आत्मरक्षा और आत्मविश्वास जगाना भी रहा होगा।
संभवतः
यही सोच रही होगी, एक तरह का सर्वांगीण विकास कि ये युवतियाँ जहाँ भी जाएं खुद भी सशक्त महसूस करें और दूसरों को भी बना सकें।
ये बात तो है।
और इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए शांति कुंज में ऐसी समर्पित प्रशिक्षिकाएं थीं जिन्होंने, जैसा लिखा है, अपनी पूरी जिंदगी इसी काम में लगा दी थी। वो जरूरत पड़ने पर दूसरी शाखाओं में जाकर मार्गदर्शन भी करती थीं। साथ ही साप्ताहिक सत्संग और पर्व त्योहारों जैसे मौकों के जरिए स्त्रियों को आपस में जोड़ने, एक संगठन बनाने पर भी जोर था।
तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, शांति कुंज ने स्त्री जागरण के लिए एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाया था, मतलब लिखना, छापना, बोलना, समझाना, दिखाना और सबसे बढ़कर जमीनी स्तर पर ट्रेनिंग देकर उन्हें संगठित करना।
हाँ, सब कुछ था।
हाँ,
और ये सिर्फ अक्षर ज्ञान या कोई हुनर सिखाने तक ही सीमित नहीं था।
नहीं,
इसका असली मकसद लगता है स्त्रियों में आत्मविश्वास जगाना, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना और परिवार व समाज के निर्माण में उनकी एक सक्रिय भूमिका तय करना था।
हाँ,
इसमें उस समय की जो पारंपरिक सोच थी और जो नई जरूरतें थी उनके बीच एक तालमेल बिठाने की कोशिश साफ नजर आती है।
आज की इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि उस जमाने में जब साधन भी शायद आज जितने नहीं थे, तब इस तरह के अभियानों में जिन सिद्धांतों और तरीकों का इस्तेमाल हुआ, वो आज के समय में जब हम स्त्री सशक्तिकरण की इतनी बात करते हैं, तो आज के प्रयासों के लिए वो कितने मायने रखते हैं? क्या उनसे आज भी कुछ सीखा जा सकता है?
ये वाकई सोचने वाली बात है। उन बुनियादी सिद्धांतों की प्रासंगिकता आज भी हो सकती है